सृष्टि के रहस्य।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम सृष्टि के रहस्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
अधिकांश लोगों के जीवन में बहुत से मूल और संयुक्त सवाल होते हैं। साधारण लोगों से लेकर विशेष लोग और बुद्धिजीवी तक अपने जीवन के किसी न किसी चरण में सवालों का सामना करते हैं और कई बार उन सवालों की अनदेखी के बाद भी कभी न कभी उन सवालों के जवाब के बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। इस सृष्टि की रचना, उसके रचयिता और क्या यह कि इस रचना में रचयिता के चिन्ह हैं जैसे सवालों के बारे में वे ज़रूर सोचते हैं। इन सवालों को मनुष्य के मन में पैदा होने वाले मूल प्रश्नों में शामिल समझा जाता है। दुनिया के विभिन्न मतों और धर्मों में इंसानों के इन बुनियादी सवालों के जवाब दिए गए हैं। यहाँ पर यह बात भी विचार योग्य है कि इस्लाम ने सभी को सृष्टि में विचार व चिंतन करने का निमंत्रण दिया है और स्वयं भी सृष्टि के बारे में विचारधारा पेश की है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। इस्लामी बुद्धिजीवियों ने इस्लामी शिक्षाओं, कुरान मजीद की आयतों और हदीसों के आधार पर इस सृष्टि पर चिंतन किया और इन सवालों का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। उनका प्रयास ये था कि क्या हमारे आसपास की चीज़ें रचयिता के अस्तित्व का पता देती हैं।
पिछली चर्चाओं में हमने बताया था कि ईश्वरीय रचनाओं के बारे में चिंतन ईश्वर की पहचान का एक मार्ग है। इंसान इस दुनिया के विभिन्न चीज़ों को देखकर और उन पर विचार करके निश्चित रूप से ईश्वर तक पहुंच सकता है। हालांकि लोग अपने आसपास मौजूद चीज़ों पर विचार नहीं करते और वो सब उनके लिए सामान्य सी चीज़ हो जाती है, जबकि उन सब में ईश्वर के चिन्ह मौजूद हैं। उदाहरण स्वरूप, हम सब एक ही आकाश के नीचे रहते हैं और हम सब एक ही सूरज से रोशनी लेते हैं। हम जब भी चांद की बात करते हैं तो चांद अपने विशेष रूप के साथ हमारी नज़रों के सामने घूम जाता है। हम सब सर्दी, गर्मी, बसंत जैसे मौसमों का अनुभव प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या हम सब इन सारी चीज़ों की रचना के बारे में भी सोचते हैं? क्या हम सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे अस्तित्व में आईं और उन्हें किसने बनाया है? क्या कभी हमने सोचा है कि चांद व सूरज के होने या न होने का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये बदलते मौसम क्या कहते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे।
यदि हम अपने सिर के ऊपर देखें और आकाश पर नज़र दौड़ाएं तो एक रोचक चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो आकाश का रंग है। ये जो आसमान का रंग होता है वो आँखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा रंग होता है। बहुत से डॉक्टरों का कहना है कि आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आकाश को देखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर ने किस प्रकार इस रंग में आकाश को बनाया। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि रोशनी या सफ़ेद रंग को लगातार देखने से आँखों की रोशनी पर असर पड़ता है। इसीलिए ईश्वर ने आकाश को ऐसे रंग में बनाया जो इंसान की आँखों के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है, क्योंकि आकाश हमेशा इंसान के ऊपर रहता है। अब अगर किसी ऐसे रंग में आकाश होता जो उसकी आँखों के लिए हानिकारक होता तो फिर क्या होता?
आकाश में ही रोज़ उगने और डूबने वाले सूरज पर ध्यान दें। अगर मान लें सूरज निकलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा और बहुत सी सुंदरताओं का निशान भी नज़र नहीं आएगा। रंगों की सारी सुंदरता सूरज के प्रकाश से ही है और ये सब कुछ तो विदित रूप में दिखाई देने वाले फायदे हैं, वरना इस धरती पर जीवन के लिए सूर्य और उसकी किरणों की भूमिका बेहद अहम है।
ईश्वर ने सूर्यास्त में भी बहुत कुछ रखा है। आप सोचें, अगर सूरज डूबे ही ना तो धरती पर रहने वाले रात के सुख से वंचित हो जाएंगे और हमेशा सूरज के चमकते रहने से पेड़ पौधों का जीवन कठिन हो जाएगा। इससे चंद्रमा की उपयोगिता और सुंदरता किसे नज़र आएगी? तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर ने किस प्रकार चांद व सूरज को बनाया है और धरती के लिए उनमें एक ऐसी व्यवस्था रखी है जिसके अंतर्गत वो निर्धारित समय पर अपनी जगह बदलते हैं और ये सब कुछ इंसानों के भले के लिए है।
वैसे सूरज की कहानी उगने और डूबने तक ही नहीं है, बल्कि उसकी गतिशीलता दिन, हफ्ते, महीने और साल बनाती है और सूरज की गति से ही इस धरती पर सर्दी, गर्मी और बहार के मौसम आते जाते हैं। सूरज ही अनाज व फल उगाता व पकाता है और इसी सूरज की मदद से ही इंसान दिन व महीनों व हिसाब रखता है, अपनी और दूसरों की आयु जोड़ता घटाता है, क्योंकि सूरज की गति निर्धारित होती है और उसमें बदलाव नहीं आता। तो क्या ये सोचने की बात नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था उसमें किसने रखी? इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये सब कुछ स्वयं ही अस्तित्व में आ गया है और स्वयं ही इतनी सूक्ष्म व्यवस्था बन गई है, स्वयं ही रात दिन बदलते हैं, सूरज चांद और सितारों की चाल, बदलते मौसम, अनाज का उगना, फसलें, सब कुछ खुद ही होता है। तो सवाल ये है कि ये लोग पार्क में लगे फव्वारे के बारे में क्यों इस तरह की बात नहीं करते? यदि हम ये कहें कि पार्कों में पेड़ पौधों को सींचने और उसकी सुंदरता बढ़ाने वाले फव्वारों को किसी ने नहीं बनाया और पार्कों में पानी पहुंचाने के लिए वो खुद से ही बन गए हैं, तो लोग ये बात कहने वालों के बारे में क्या सोचेंगे?
जब इस दुनिया की साधारण सी चीज़ के लिए किसी बनाने वाले की ज़रूरत है, तो फिर खुद दुनिया के लिए किसी बनाने वाले की ज़रूरत नहीं? इस दुनिया की ऐसी व्यवस्था, इतनी सूक्ष्मता और ऐसी बारीकी, फिर भी वो सब कुछ खुद से बन गया? ज़रा सोचें। मौसम में बदलाव और पर्यावरण जो इंसानों के हाथ में, उसमें ज़रा सा परिवर्तन किस प्रकार से विनाश का कारण बन सकता है? तो यदि चांद, सूरज और तारों की व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाए तो फिर क्या होगा?
सच्चाई यह है कि यह सब कुछ एक सर्व सक्षम ईश्वर की शक्ति से चल रहा है। ये व्यवस्था, ये रचना और दुनिया और सारे प्राणी, हर चीज़ उसी ईश्वर की ओर संकेत करती है जिसने उन्हें बनाया और जो उन्हें चला रहा है। यदि वो न होता तो कुछ भी न होता, और यदि सब कुछ है तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया का कोई रचयिता है जो बहुत ही कृपालु है और उसकी कृपा से ये व्यवस्था चल रही है और जीव जंतु और मानव तथा हर प्राणी जीवित है।